अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण श्री प्रेमपुरी आश्रम का परम सुंदर आनंदमयी ये प्रांगण जिसमें हम लोग सशरीर बैठकर और मानसिक रूप से परम प्रबलतम भगवान की वाणी ऋषियों की वाणी का हम लोग आस्वादन करते हैं और चिंतन करते हैं उन शास्त्रों का दिव्य शास्त्रों का जो हमारे ऋषियों मनीषियों महाप्रभुओं ने हमको दिया है। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है, भगवान की हमारे ऊपर महती अनुकंपा है। अमृत बेला प्रातःकाल का सुंदर शांत वातावरण और ऐसे शांत वातावरण में अपने मन बुद्धि चित्त को शांत करने के लिए नित्य प्रति सत्संग और स्वाध्याय का हम लोग आनंद लेते हैं। तो महापुरुषों की कृपा भगवान की कृपा वर्तमान में जो हमारा विषय है षोडश अध्याय भगवान के द्वारा निश्चित वाणी वेदव्यास जी के द्वारा भगवान की वाणी को श्लोकबद्ध किया गया ये सुंदर शास्त्र श्रीमद भगवद गीता षोडश अध्याय दैवी संपदा आसुरी संपदा जिसमें हम लोग दैवी संपदा के गुणों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और वर्तमान में हमारा जो चल रहा है विषय अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। तो हम लोग तप के ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो अति आवश्यक और आवश्यक ही नहीं बल्कि श्रुति के द्वारा तो तप को ब्रह्म विद्या का आधार माना गया है, सत्य का आधार माना गया है और उसके लिए हम लोगों ने जो है भगवान की ही वाणी को किस प्रकार से भगवान जो है तीन प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करते हैं। जिस समय हमारी जो शारीरिक सेवा रूपी जो उपासना है जो तप कहलाता है ना, तप का मतलब जैसे किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो वो गर्म होने पर उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो हम अपनी ऊर्जा का अनुभव नहीं करते, जब आप देखिए सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद जो है आपको आपका शरीर कैसा लगता है, आलस्य होता है ना उस समय शरीर में, उठने का मन नहीं करता है। फिर धीरे धीरे आप उठते हैं, ज्यों ज्यों आपका जो है नित्य कर्म प्रारंभ होता चला जाता है त्यों त्यों आपके अंदर ऊर्जा का संचरण होने लगता है और आप अपने आप को थोड़ी देर के बाद घंटे दो घंटे के बाद परम ऊर्जा में अनुभव करते हैं ना, वो प्रातःकाल का जो आलस्य जब निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक आलस्य आया हुआ है और वो आलस्य है जगत के पदार्थों का, जगत के भोगों का। एक निद्रा तो संसार निद्रा है जो आपका शरीर निद्रा में विलीन होता है और प्रातःकाल उठकर जो है आलस्य आलस्य के का परित्याग करके फिर ऊर्जा का अनुभव करता है। लेकिन वर्तमान में जो हमारी अवस्था है, जो हम अपनी आत्मशक्ति की ऊर्जा का अनुभव ना करके अपने आप को संसार में दीनहीन लाचार जो अनुभव करते हैं तो उस परम ऊर्जा जिसको आत्म ऊर्जा कहते हैं उसका अनुभव करने के लिए जैसे वो तप आवश्यक है उसी प्रकार से ये तप आवश्यक है ना। जैसे वहां पर आप धीरे धीरे खाना पीना कुछ खाया पिया फिर घूमे इधर उधर टहले या जो भी कार्य किया आपने अपने आप को ऊर्जान्वित किया तो आपने ऊर्जा का अनुभव किया। इसी प्रकार से अध्यात्म के पथ में आपको तप करना पड़ेगा। तप का मतलब जो आपने निर्णय लिया है, जिस धर्म के पालन का आपने निर्णय लिया है उस धर्म के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा और समर्पित होने पर आपको आलस्य प्रमाद का परित्याग करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले जो है हमारे यहां शरीर की उपासना बताई भगवान ने, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्म अहिंसा चा शरीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है, यानी जब आपका शरीर जो है सही लाइन पे होगा यानी ठीक रास्ते पर जा रहा होगा तो आपका मन भी ठीक रास्ते पर जाएगा, है ना। जैसे एकाएक बड़ी सुंदर सड़क में जा रहे हैं और बड़ा आपका मन बड़ा सुंदर है उस समय प्रसन्नता मन में, लेकिन एकाएक बिल्कुल गंदा रास्ता आ गया, वहां कूड़ा करकट ही पड़ा हुआ है, तो शरीर भी कूड़े करकट के रास्ते में चला गया और उसके संग संग आपका मन भी कैसा हो गया, खिन्न हो गया कि नहीं हो गया? आपका अच्छा खासा जो स्वस्थ मन था वो भी अस्वस्थ हो गया। बात समझ में आती है कि नहीं? अगर आपका शरीर सही रास्ते पे है तो आपकी मन बुद्धि भी सही रास्ते पे होगी। तो इसलिए हमारे यहां शरीर तप, सबसे पहले तो सेवा के माध्यम से अपने जो हमारे बड़े हैं, बूढ़े हैं या जो पूजनीय हैं, उनके संग संग अपने जीवन में बिल्कुल सरल जीवन जीते हुए, इंद्रियों का निग्रह करते हुए, ये सब तपस्या कहलाती है। नित्य प्रति जो है अहिंसा का आचरण करते हुए शरीर संबंधी तप भगवान ने माना। उसके बाद दूसरा तरफ जो है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्री हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तपुच्यते। तो ये वाणी का तप है, क्योंकि यही विशेष शक्ति हमको प्राप्त हुई है, तो ऐसे वाक्यों को बोलना यानी वाणी को उतना ही प्रयोग करें विदुर जी की तरह, जैसे विदुर जी जो है अपनी वाणी को बिल्कुल सोच समझकर गतिमान करते थे। व्यर्थ का एक भी शब्द उनकी वाणी से निकलता नहीं था। इसका परिणाम ये होता था कि उनकी वाणी पूर्णतया सत्य होती थी, और युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जो है विदुर जी की वाणी को विशेष गौर करके श्रवण करते थे। एक वाक्य भी बोले तो वो भी अर्थ से भरा हुआ होता था। तो ऐसी वाणी को अनुद्वेग कर्म वाक्यम कहा जाता है। गीता जी की भाषा में ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे को उद्वेगवान न करे, सत्य बोले, प्रिय हितम बोले, दूसरे के लिए हितकारी हो, प्रियकारी हो और सत्य से परिपूर्ण हो, ऐसा बोलना चाहिए। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, सुंदर सुंदर ग्रंथों का पठन पाठन मनन चिंतन करें, अपनी वाणी के द्वारा भगवान के नाम जप के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करें। तो ये वाणी का संयम और वाणी का तप कहलाता है, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम अपने मन को विक्षिप्त, अपने तन को विक्षिप्त, अपने जीवन को विक्षिप्त करते हैं वो व्यर्थ की बातों से करते हैं। जब भी आप व्यर्थ की चर्चा करेंगे, जब भी हमारी वाणी जो है व्यर्थ की चर्चाओं में जाएगी, तो हमको वास्तविकता में दुखी ही होना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी जो वहां पर वाणी का जो हमारा विलास कह लें या वाणी का दुरुपयोग कह लें, इस वाणी के दुरुपयोग के द्वारा हम स्वयं आत्महत्यारे बन जाते हैं, है ना? भगवान कहते हैं ना, स्वयं हम अपने आप को अपनी आत्मा की हत्या करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हम व्यर्थ की बातों में अपने समय को व्यर्थ करके अपने प्रभु से, अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं और पूर्णतया जो है संसार के दलदल में धस जाते हैं। इसलिए हमारे यहां वाणी का तप कहा गया है। ये तप है नित्य प्रति के, आपके ये जो तप बताए जा रहे हैं ये कोई अलग से आपको कोई बट वृक्ष नहीं ढूंढना है, कोई हिमालय पर्वत नहीं ढूंढना, कोई कंदरा नहीं ढूंढनी है। जो जीवन आप जी रहे हैं, जिस साधारण से जीवन में आप अपने आप को रखे हुए, उसी जीवन में ही ये तप होने हैं और वैसे ही होने जैसे हैं। उसमें कोई आपको विशेष प्रयास, प्रयत्न या विशेष समय नहीं निकालना। जो जीवन आप जी रहे हैं, केवल इसी जीवन को कैसे जीना है, अगर ऐसा जीना सीख लिया तो आप चलते फिरते, कमाते, परिवार को पालते तपस्वी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो वाणी का तप। मनः प्रसादः सौमत्यम् मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो तपो मानस मुच्यते। भाव संशुद्धि, तीसरा तप मन का तप माना भगवान ने, है ना? सबसे कठिन जो अवस्था है वो मन की है। इतना चंचल है कि अर्जुन ने तो साफ कह दिया कि महाराज मन को संभालना कठिन है, वायु को भी मैं मानता हूं कि वायु भी संभाली जा सकती है, लेकिन ये मन जो है इतना गतिमान है कि एक सेकंड भी स्थिर रहने को तैयार नहीं। मनः प्रसादा सौमत्तम मौनमात्म विनिग्रहा भाव संशुद्धरितेतत् तपो मानस मुच्यते। मन के तप क्या हैं? मन के तप हैं, स्वयं आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? बोले मनः प्रसादा, मन की प्रसन्नता। यदि कोशिश करके आप अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, है ना, ये दूसरा नहीं आपको प्रसन्नता देगा, ये प्रयत्न या पुरुषार्थ कह लीजिए, ये स्वयं आपको करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, दुख कब होता है? अरे तो रोज का साथी है आपका। क्यों भाई, दुख कब होता है? दुख तब होता है जब आपके जीवन में कोई हानि होती है, कोई चीज छूटती है, कोई चीज आपकी नष्ट हो जाती, तभी तो दुख होता है। अगर जो है हर समय कुछ ना कुछ मिलता ही रहे, हैं, हर चीज बढ़ती ही रहे, तो मन कभी दुखी होता है? बड़ी प्रसन्नता होती है हमारा, है ना। और जब हमारे पास से जाने लगता है, जैसे आप बाजार जाते हैं, ज्यो ज्यो आपका बटुआ खाली होता जाता है, तैसे तैसे आपका मन नहीं, हाँ, और फिर जब बटुआ भर जाता है तो फिर मन क्या हो जाता है? फिर प्रसन्न हो जाता है। तो दुख कब होता है? दुख तब होता है जब हमारी हानि होती है। अब जो समस्या है कि हमारा मन प्रसन्न कैसे हम करें, क्योंकि रात दिन ये मनुष्य जो है अभावग्रस्त, अपने आप को हमेशा अभाव में ही देखता है, किसी ना किसी प्रकार का अभाव इसके जीवन में बना ही रहता है। अब समस्या है कि ऐसे अभावग्रस्त जिसको भगवान ने दुखालयम कहा है, यहां दुख की कोई कमी नहीं, भरमार है, और अभावों का भी जो है कोई खजाना कम नहीं है महाराज, ऐसे में अपने आप को प्रसन्न कैसे रखें? क्यों भाई? और सबसे विकट समस्या जरा एक बात बताओ, जिसका बिल्कुल किसी का युवा पुत्र या बिल्कुल बच्चा छोटा 5-7 साल 10 साल का मरा हो, क्या वो अपने मन को प्रसन्न रख सकता है? क्यों भाई, है उसके पास कोई रास्ता? क्या कहना आपका, बोलो। तो फिर अध्यात्म खत्म, फिर अध्यात्म तो खत्म हो जाएगा भाई, जब वो अपने मन को प्रसन्न रख ही नहीं सकता, और बिना मन की प्रसन्नता के आपको परमेश्वर का लाभ मिलने वाला नहीं है, निज स्वरूप की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो नियम है, ये शाश्वत नियम है, ये होना ही होना है। जैसे बाजार में जाने के लिए आपके पास पैसे होने आवश्यक हैं, उसी प्रकार से ये जो दैवी संपदा के गुण आपको गिनाए जा रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना के लिए यानी निस्वरूप की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ये गुण आपके अंदर होने ही होने चाहिए। इसके बगैर दाल गलने वाली नहीं है, कि आप सोचेंगे महाराज इसके बगैर भी काम हो जाएगा। तो ऐसी विशेष परिस्थितियां देखी जाती है महाराज, साधारण परिस्थितियों के अभाव में ही मनुष्य जो है दुखी हो जाता है, तो असाधारण अवस्थाओं में तो उसकी क्या दशा होगी महाराज, स्वयं विचार करके देखिए। तो भगवान कहते हैं मन का तप है, ये तप है, वो अपने आप को विशेष जो परिस्थितियां संसार में देखी जाती हैं, जहां पर जिस गड्ढे के अंदर जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता, ऐसी अवस्था में आप अपने मन की प्रसन्नता को कैसे बनाए रखेंगे? समस्या ये है ना मुख्य। तो वहां पर इसीलिए अध्यात्म है, इन्हीं क्षणों के लिए अध्यात्म है, जब हम विशेष संसार की दुखद परिस्थितियों में फंस जाएं, उस समय हम अपने आप को कैसे प्रसन्न करें, तब जो है ये अध्यात्म काम करता है। और अध्यात्म उस समय आपको समझाता है कि वास्तविकता में यहां कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है, जब ये धारणा आपकी पुष्ट होगी, है ना। जैसे आपको बताया था ना त्रिशंकु ऋषि का अनुभव, है ना, त्रिशंकु ऋषि का अनुभव क्या कहता है, सुमेधा अमृतोचित, अमृतमयी बुद्धि हो गई ना, धी धारणावती इति सुमेधा, है ना। जब हमारी बुद्धि सुमेधा हो जाती है, ये मन की प्रसन्नता तब आएगी जब आपकी बुद्धि धारणा युक्त होगी, धी धारणावती इति सुमेधा। सुमेधा कब होगी? जब ये धारणावती होगी, धारणावती जब इसके अंदर निरंतर ये धारणा होगी कि निरंतर परम प्रकाशित कभी ना नष्ट होने वाले अजर अमर अविनाशी परम तत्व परमेश्वर ही मेरे संग हमेशा हैं और रहेंगे, रहने वाले हैं। वही मेरा अपना स्वरूप है और वही परम सत्य है, बाकी सब नाटक मात्र है। जब ऐसी आपकी बुद्धि धारणा युक्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी भी परिस्थिति में दुख का अनुभव नहीं होगा। अन्यथा संसार के साधारण और जो असाधारण स्थितियां हैं उसमें मनुष्य दुखी होकर के भगवान के मार्ग को, अध्यात्म के मार्ग को छोड़ देता है और ये कह देता है कि महाराज कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, सब बेकार की बात। लेकिन जब हम मनः प्रसादा, अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेते हैं, इसीलिए अगला शब्द ही दिया गया है सौमत्वम, सौम्य बना लेते हैं, शांत कर लेते हैं अपने मन को बिल्कुल, है ना। ये शांत तभी होगा जब आप निरंतर चिंतन के माध्यम से भगवान की ओर, परम शांत की ओर जो है, जो भी आप देखें भगवान की वंदना हमारे ऋषियों मनीषियों महापुरुषों ने की है। तुलसीदास जी भगवान श्री राम का स्वरूप देखकर उनकी वंदना कैसे कहते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, शांत स्वरूप, है ना। दूसरा ऋषि ने लिखा शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान का वर्णन ही परम शांत रूप में किया जाता है ना। तो इसी प्रकार से जब आप उनका चिंतन करेंगे, उनका जो है अपने जीवन में अवतरण करेंगे, तो आपका मन भी परम शांत स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। ये जो इधर उधर भागने वाला तड़पने वाला मन है, परम शांति का अनुभव करेगा। इसी का ही एक और प्रारूप दिया भगवान ने, मौनम, है ना। मौन का मतलब, साधारण भाषा में मौन का मतलब क्या है कि बोलो मत, है मौनी अमावस्या होती है ना हमारे यहाँ एक, तो मौनी अमावस्या के दिन बोलते नहीं है, ऐसा तप करते हैं मौन रहकर। लेकिन यहां पर भगवान ने मौन किसको माना है, हाँ, जो हमारा अपना मन है वो मौन हो जाए, क्योंकि ये मन ही तो आपके संग बातें करता रहता है। भाई अकेले में बैठ के किससे बातें करते हो, मन से, और जब सो जाते हो अर्ध निद्रा में किससे बात करते हो, अपने आप मन से बात करते हो, और जब हम उठते हैं तो उसी को स्वप्न बोलते हैं। हम बोलते हैं हमने स्वप्न में ऐसा देखा, स्वप्न में देखा नहीं, आप अर्ध निद्रा की अवस्था में अपने मन से जो बातें कर रहे थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं। स्वप्न दिखाई नहीं देता, अंदर भगवान ने कोई आंख नहीं लगाई है, और ना कोई आप, मेरे ख्याल से कोई थिएटर है आपके अंदर की है, हैं? कोई थिएटर है अंदर, कोई प्रोजेक्टर लगाया भगवान ने कि भाई रात में स्विच ऑन कर दो और सो जाओ, उसके बाद प्रोजेक्टर चालू है, फ्री की फिल्म देखते नहीं है हम, केवल विचार करते हैं अपने मन के संग, बातें करते हैं। जैसे नेता है, अब इलेक्शन लड़ रहा है, रात में जो है उसको लेटते ही महाराज स्वप्न दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है कि मैं बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहा हूं, मेरे सामने हजारों की भीड़ लगी हुई है, सब मेरे नाम का जो है जयकारा लगा रहे हैं, फलाना जिंदाबाद जिंदाबाद, और महाराज मैंने बड़ा जोरदार भाषण दिया, तभी उसने सुबह सुबह पति ने कहा जी उठो उठो है? है? अब नेताजी उठ के बैठ गए और आंख मलमल के देखने लगे, ना वहां लाउड स्पीकर है, ना माइक है, ना जनता है, ना जनार्दन है, सब कहां चले गए, कहां चले गए, जहां से उदय हुए थे वहीं पर चले गए, मन से उदय हुए थे और मन के ही अंदर समाहित हो गए, ना वहां जनता थी, ना वहां पर कोई भाषण था, ना वहां लाउड स्पीकर था, ना माइक था, केवल एक ही था, वो मन था जिससे नेताजी इतनी सारी बातें करते रहे और लगने लगा कि मैं क्या देख रहा हूं। यही है हमारी स्वप्न दुनिया जिसमें आप खो जाते हैं। जब डरावनी बात करते हैं तो डर लगता है, जब सुहावनी बात करते हैं तो सब हमारे अपने मन की बातचीत है। इसीलिए बचपन में आपको चॉकलेट के स्वप्न दिखाई देते थे, युवा हुए तो आपको धनवन के स्वप्न, प्रॉपर्टी के स्वप्न दिखाई देने लगे, और जब बुढ़ापा आया तो महाराज मरने जीने के स्वप्न दिखाई देने लगते क्यों जी, ऐसा ही है कि नहीं है, स्वप्नों की स्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई। हाँ, बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग अनुभव सुनाएंगे, अरे आज तो हमने जो कौन कौन से जो मर के चले गए उनको देख, किसी को देखा नहीं, ये सब आपकी अपने मन की गड़बड़ी है। इसलिए भगवान कहते हैं इस मन को मौन कर दो, क्या कर दो, हाँ, ये स्विच ऑफ कर दो माइक का, ये माइक जो है और स्पीकर बोलना बंद कर देगा तो महाराज तुम्हारा मन बिल्कुल कैसा हो जाएगा, शांत मन में प्रभु के दर्शन होते हैं। केवल इतनी तो बात है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन का कारण है। जब संसार के संग मन बन जाए तो हम बंधन में, जब भगवान के संग ये मन बन जाए तो हम मुक्त स्वरूप हैं। तो मनः प्रसादा सौमत्वम मौन मात्म विनिग्रह, कहते हैं यही वास्तविकता में भगवान कहते हैं मन का निग्रह है। मन का निग्रह कुछ और नहीं है, ये मौन ही मन का निग्रह है। जितना ज्यादा आपका मन शांत रहेगा उतना ही आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। उसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि विशेष रूप से हम ध्यान में बैठे हैं, फिर समाधि में, या कोई विशेष साधना हो, आराधना हो भगवान से जुड़ने की, तो यहां पर श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जितना आपका मन निग्रहित तो होगा, निग्रहित शांत होगा, उतना ही ज्यादा आपके मन में आनंद का अनुभव होगा। भाव संशुद्धि, भगवान उसके बाद जो है मन की तपस्या का एक गुण बताते हैं, अंतःकरण को जो है। भाव संशुद्धि का मतलब जो आपका अपना अंतःकरण है वो पूर्णतया पवित्र होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, है ना। जो हमारे अंदर बैर भाव है वो कैसा होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि संसार में इसके बगैर काम भी नहीं बनता, लेकिन किसकी तरह होना चाहिए, बालवत होना चाहिए, क्योंकि संसार है तो इसमें तो उठा पटक तो होगी ही। महाराज जैसे पहलवान जो है अखाड़े में लड़ता है मगर एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते हैं, केवल खेल के लिए लड़ते हैं, बाजी खत्म हो गई उसके बाद फिर हाथ मिला लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको कहते हैं निष्कपट जीवन, यानी हृदय में किसी के संग दुष्भावना या दुर्भावना को जन्म मत दो। ये कपट रहित हृदय, कपट रहित भावना, चाहे जैसे बच्चे आपस में इतना झगड़ते हैं, देखो खूब लड़ाई लड़ लेंगे और दूसरे दिन सुबह उठ के फिर दोस्ती कर लेंगे आपस में, हो जाती कि नहीं हो जाती। ये निष्कपट जीवन कहलाता है, बालवत जीवन कहलाता है, ये योगी का जीवन कहलाता है, ज्ञानी का जीवन कहलाता है हमारा, है ना। और इसके लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहां दिया जाता है वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का। वशिष्ठ जी के मन की शुद्धता की जरा कल्पना कीजिए आप। जब नंदिनी गाय के लिए दोनों के मध्य में युद्ध हुआ तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया, 100 पुत्रों का वध कर दिया महाराज। और एक दिन जो है केवल किस लिए, केवल इसलिए कि वशिष्ठ जी अपने मुंह से मुझे ब्रह्मर्षि कहें। और जब भी विश्वामित्र जी सामने आते थे वशिष्ठ जी उनसे कहते थे राजर्षि, और जैसे ही वो राजर्षि कहते थे और विश्वामित्र के शरीर में क्या लग जाती थी, आग लग जाती थी बोला। और इसका परिणाम ये हुआ, इतनी भयंकर उनके मन में आग लगी द्वेष की कि उन्होंने 100 पुत्रों का वध कर दिया हमारा। और उसके बाद एक दिन जो है पूर्णिमा की रात को विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ जी को मारने वाला, आज इसको मैं खत्म करूंगा, ये मुझे ब्रह्मर्षि नहीं बोलता, सृष्टि रचना कर डाली, जब भी मिले राजर्षि। तो चांदनी की रात थी, पूर्णिमा का चंद्रमा महाराज निकला हुआ था, अरुंधति के संग वशिष्ठ जी विराजमान थे अपने आंगन में, और उस समय छुप करके महाराज खड़े हुए थे विश्वामित्र जी की, मौका मिले और मैं कूद करके आंगन में जाकर इनके सिर को जो है अलग कर दूं तलवार से, ऐसा तलवार निकली हुई एकदम तैयार। वार्तालाप हो रहा अरुंधति और वशिष्ठ जी के बीच में। वशिष्ठ जी कहते हैं देखो अरुंधति, ये चंद्रमा कितना सुंदर है, ठीक विश्वामित्र की तरह। जो सुंदरता इस चंद्रमा में है उतनी ही सुंदरता विश्वामित्र के अंदर है, लेकिन जैसे इसमें ये कालिक का धब्बा लगा हुआ है ऐसे ही विश्वामित्र में भी अहंकार का धब्बा लगा हुआ है। जब विश्वामित्र ने सुना कि कमाल है, जिसके पुत्रों की मैंने हत्या कर दी, 100 पुत्रों की हत्या कर दी, उसके बाद भी वो मेरे अंदर सौंदर्य निहार रहा है, ये मन की सुंदरता का चरम है, ये है सनातन धर्म। कल्पना कर सकते हैं आप, कि किसी ने आपके सतपुत्रों की हत्या कर दी हो और उसके बाद भी आप उसके अंदर क्या देख रहे हैं, गुणों का दर्शन कर रहे हैं महाराज, इसको कहते हैं भाव संशुद्धि। हाँ, ध्यान देना, भगवान श्री राम जिस समय विभीषण विलाप करने लगे, वाल्मीकि रामायण बड़ा सुंदर प्रसंग आता महाराज, जिस समय विलाप करने लगे विभीषण रावण के शव को देखकर, हे भ्राता तुमने मेरा कहना नहीं माना और आज इसका परिणाम हम पूरा परिवार भुगत रहा है और तुम इस समय मृत होकर मेरे सामने पड़े, बड़ा भयंकर विलाप किया महाराज। तो भगवान ने उस समय समझाया और भगवान ने उस समय पता क्या कहा विभीषण से, बोले ये विलाप करने योग्य नहीं है रावण, ये तो महाराज बड़ा ही साहसी था और वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसने अंत तक जो है हार स्वीकार नहीं की, मरना स्वीकार किया मगर इसने हार स्वीकार नहीं की महाराज। ये रावण की क्या मानी है भगवान ने, विशेषता मानी। भगवान कहते हैं मैं हार जाने वाले से प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं किससे प्रसन्न होता हूं, जो हार ना स्वीकार करके मरना पसंद करता है। इसलिए विभीषण इसने वीर गति प्राप्त की है। हमारे यहां दो ही गतियां महान मानी गई हैं, एक मोक्ष गति और एक वीर गति, या तो वीर गति, हार जाने वाले को कोई भी स्वीकार नहीं करता इस संसार में। इसलिए विभीषण इसके लिए विलाप मत करो, क्योंकि ये हारा नहीं है, इसने जो है मृत्यु को गले लगाया हार को स्वीकार करने की वजह। अगर ये मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांग लेता तो मेरे लिए रावण किसी काम का नहीं था, बेकार था। क्यों भाई, आपको कैसा लगता है, हम लोगों को हार में ही मजा आती है कि नहीं आती? हाँ, विश्वामित्र जी महाराज कूद के तलवार उन्होंने रखी अपनी म्यान के अंदर और साष्टांग दंडवत करके लेट गए वशिष्ठ जी के चरणों में। बोले कमाल है महाराज, मैंने आपके 100 पुत्रों को मार दिया, अगर आपकी जगह कोई होता तो मैं रात दिन गाली देता, मेरी तरफ कभी देखते ही नहीं, आप मेरे सौंदर्य को देख रहे हैं कि ये गुण है विश्वामित्र के अंदर, ऐसा सुंदर जीवन है। जैसे ही महाराज उन्होंने इस प्रकार से दंडवत किया उसी समय, क्योंकि अहंकार नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया उसी समय जो है वशिष्ठ जी ने जो है विश्वामित्र जी को उठाया, बोले उठो ब्रह्मर्षि। ये है ब्रह्म ज्ञान। हाँ, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, क्योंकि यहां ना कोई बड़ा है ना छोटा है, यहां ना कोई मरने वाला है ना जीने वाला है, ना बना है ना बिगड़ेगा। अरे बिगड़ेगा तब जब वो बना हो, तो जब इस चीज को कोई समझ लेता है उसको कहते हैं भाव संशुद्धि, उसका भाव कभी नष्ट नहीं होता है ना। नहीं तो भगवान तो जो है रावण के शरण में आने पर ज्यादा प्रसन्न होते, लेकिन भगवान युद्ध लड़कर रावण ने जो गति प्राप्त की उससे प्रसन्न हुए। तो भाव संशुद्धि, हमारा भाव कैसा होना चाहिए, बच्चों की तरह बिल्कुल निष्कपट भाव, जैसे वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को हृदय लगाया, इसी प्रकार से जब हम इसी मन को पूर्णतया अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो शास्त्र कहते हैं इस दुनिया में उससे बड़ा कोई भी सुखी नहीं है। जो अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है वो इंद्र को भी जीत लेता है महाराज। और थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, अगर इस मन की चर्चा को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो भगवान ने दूसरे अध्याय में, है ना, थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहिए महाराज, दूसरे अध्याय में यदि आप चलो तो महाराज भगवान ने मन का आपका जो है रूप पूर्णतया समझाने की चेष्टा की है। और वो कहां पर, क्यों भाई कुछ आप लोग भी तो सहायता करो। हैं, नहीं नहीं भाई, मन की बात हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ स्थित प्रज्ञ दर्शन है, क्या चीज है, हाँ इसी चीज को भगवान ने यहाँ पर स्थित प्रज्ञ दर्शन में समझाया है। किस रूप में है, ज्यादा पढ़ लिया ना, ज्यादा पढ़ने वालों का यही होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेत सो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्यों भाई, याद आया कुछ? हाँ, प्रसादे सर्व दुख स्थित प्रज्ञ स्थिति। स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसकी बुद्धि परमात्मा में क्या हो गई है, स्थित हो गई है। किसी भी प्रकार की सांसारिक स्थिति जिसके मन बुद्धि चित्त को परमात्मा से अलग नहीं कर सकती है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? संसार की कोई भी स्थिति परिस्थिति, चाहे सुख हो अथवा दुख हो, बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा सुख, जिसकी बुद्धि को परमात्मा से अलग नहीं कर सकता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर चित्त कहते हैं, स्थिर बुद्धि कहते हैं, और शास्त्रीय भाषा में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित का मतलब जो विचलित ना हो, और प्राज्ञ का मतलब बुद्धि, प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि बिल्कुल भी चलायमान नहीं होती। कहां से चलायमान नहीं होती? परमात्मा से। ऐसा जो परमात्मा में स्थित है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं महाराज प्रसादे सर्व दुखानां। प्रसाद शब्द का अर्थ था प्रसन्नता। प्रसाद का मतलब हाँ, जिसका अंतःकरण बिल्कुल क्या हो गया, अपने परमेश्वर के आनंद घन के दर्शन करके परम प्रसन्न हो गया है, उसको संपूर्ण दुखों से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है ना। जिसको शास्त्रीय भाषा में या श्रुति की भाषा में, वेद की भाषा में कहते हैं शोकः तरति आत्मवित। आत्मवित शोक से क्या हो जाता है, पार हो जाता, दुखों से वो पार हो जाता, फिर उसके जीवन में दुख का अनुभव नहीं रहता। जब आपका चित्त सांसारिक प्रसन्नता नहीं, जैसे आप फिल्म देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, सांसारिक प्रसन्नता है, और जो आध्यात्मिक प्रसन्नता है वो कभी समाप्त, हाँ, एक बार मन जब आध्यात्मिक प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है फिर महाराज वो संसार की ओर लौटकर देखता नहीं है, है ना। संपूर्ण सर्व दुखानाम हानि, यानी उसके जीवन से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और कहते हैं प्रसन्न चेतसो यासु, और ऐसी जो उसको परम प्रसन्नता प्राप्त होती है, यानी जो उसकी परम प्रसन्न चेतस यानी बुद्धि है, वो जब इस प्रकार से अपने मन और बुद्धि दोनों एक रूप हो जाते हैं तब महाराज जो है हर तरफ से हटकर उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कहते हैं पूर्णतया भली भांति, जिसको कहा जाता है एकदम स्थिर हो जाती परमात्मा, फिर वो इधर उधर नहीं होती। ये स्थिर बुद्धि के लक्षण हैं। और इसी मन की दूसरी अवस्था को फिर अगले श्लोक में भगवान ने समझाया, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाच युक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अपने आप को पढ़ने की चेष्टा करें महाराज, है ना। ज्यों ज्यों हम अपने मन से हारे हुए हो जाएंगे, यानी जिसका मन हार गया है और जिसने संसार में अपनी हार स्वीकार कर ली है, संसार को बड़ा बना लिया और संसार के सामने अपने आप को छोटा बना लिया है, ऐसे व्यक्ति को अयुक्त पुरुष कहा जाता है ना, अज्ञानी अविवेकी कहा जाता है। कहते हैं कोई निश्चयात्मकता नहीं होती, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, ऐसी बुद्धि में कोई निश्चितता नहीं होती कि परमेश्वर ही मेरा लक्ष्य है, ऐसा न करके कभी वो संसार को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, कभी वो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, भगवान नहीं मिलते तो संसार में जाता, संसार नहीं मिलता तो भगवान की शरण में, ऐसा पागलों की तरह भटकता, अयुक्त बुद्धि कहलाता है महाराज, है ना। कहते हैं ऐसे अयुक्त बुद्धि के अंदर कोई भावना नहीं होती, भावना रहित हो जाता, पत्थर हो जाता, पाषाण हो जाता है। ममता रहित, मोह रहित होने का मतलब पत्थर बनना नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ, जो भी आपके भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम जब लीला करने आए तो उन्होंने लोगों के मध्य में प्रेम बांटा या पत्थर बन के घूमते रहे? क्यों भाई, कितना प्रेम बांटा, कोई है सीमा रेखा? जिसको देखो महाराज वही भगवान के जैसे लगता है कि ना कोई भगवान कोई अमृत कुंड है, और जिसको देखो वही उस अमृत कुंड में से भर भर के क्या कर रहा है, है? पी रहा है महाराज उस अमृत को। जितने भी आपको लीलाओं में भगवान के प्रेमी मिलेंगे, चाहे वो कृष्ण लीला हो और चाहे वो रामलीला, दोनों में महाराज ये अवस्था दिखाई देती है। तो यानी जब आपकी बुद्धि आत्मवत हो जाएगी तो आपके अंदर परम भावना का जागरण होगा और आपको हर समय हर जगह अपना परमेश्वर ही नजर आने लगेगा। अरे भाई, भगवान ने जब सुदामा का स्वागत किया तो महाराज किससे जल धोए, उनके चरणों चरण किससे धोए, आंसुओं से धोए। जरा बताओ, आपके अंदर हमारे अंदर कभी कोई किसी का भाव इतना विकसित हुआ कि उसने अपने मित्र के चरण आंसुओं से धोए हों? हमारे आंसू तो संसार के दुख में बहे, बहे कि नहीं बहे? जब आप सांसारिक रूप से दुखी हुए तो बहे आपके आंसू, प्रेम में तो नहीं बहे। और भगवान ने किस में बहाए, प्रेम में बहाए या दुख में बहाए? प्रेम में। और हमारे कभी प्रेमाश्रु निकलते ही नहीं, निकलते हैं, कभी भाव ही नहीं आता। भगवान कहते हैं ना चायुक्तस्य भावना, ये हमारी जो है अविवेक प्रकृति का लक्षण है यदि आपके अंदर इस प्रकार की प्रसन्नता युक्त भावना नहीं आती। महाराज सुदामा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। अगर भगवान की जगह हम आप होते तो हमारे अंदर से ये निकलता, ये दरिद्री कहां से आ गया? क्यों भाई, निकलता कि नहीं निकलता? ये तो आप कहानी सुनते हैं इसलिए आपको लगता है कि हाँ, सुदामा की बड़ी भगवान ने आओ भगत की फलाना किया, स्वागत किया। लेकिन यदि आपके संग ऐसी घटना घटित हो जाए तो आप ऐसा करने वाले नहीं हैं। आप तो ये सोचने वाले हैं ये कहां से आ गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कहां बैठाएं, कहां रुकाएं। क्यों भाई, विचारो, अपने जीवन को पढ़ के देखो हम कहां खड़े हुए। भगवान कहते न चा भावयता शांति शांतस्य कुतो सुखम। कहां पर, जब तक आपकी ये मनः प्रसादा स्थिति नहीं होगी, यानी जब तक आपके अंदर भावना युक्त प्रेम नहीं होगा, यानी परमेश्वर मैं जब तक ये धरती आपको दिखाई नहीं देगी तब तक आपको शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। और जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कभी सुख का अनुभव नहीं होता। चाहे वेद पढ़ लो, चाहे शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो महाराज, जप कर डालो, सुबह से शाम तक जाप करते रहो, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है, अगर तुम्हारे मन में अशांति है, तो महाराज इन सब चीजों का कोई उपयोग। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि पहले तो अपने आराध्य को हर ओर क्या करना चाहिए, देखने की चेष्टा करनी चाहिए जो दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे जब आपका भाव क्या हो जाएगा है, हाँ, विकसित होता चला जाएगा, तो फिर आपको हर जगह परमेश्वर दिखाई देंगे। फिर आपके पास एक ही व्यापार रह जाएगा, प्रेम बांटना, प्रेम देना और प्रेम को। अरे भगवान ने सबरी से क्या कहा, सबरी ने कहा प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, बिल्कुल कूड़ा हूं, ये समझ लो, कूड़ा भी मेरे से अच्छा है। तो भगवान ने कहा माना हूं एक भगति करना था, कोई रिश्ता नहीं इस दुनिया में, भगवान कहते हैं मेरा, केवल मैं किसका रिश्ता मानता हूं, जो मेरे को भजता है मैं उसको भजता हूं। ध्यान देना, तो जब तक हम ईश्वर दर्शन सर्वत्र नहीं कर लेंगे, हमारे अंदर भावना नहीं उत्पन्न नहीं होगी, और भावना उत्पन्न नहीं होगी आप प्रेम ना दे सकते हैं ना ग्रहण कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि दे नहीं सकते, ग्रहण भी नहीं कर सकते। दूसरे के दिए हुए प्रेम को ग्रहण करना भी महाराज एक बहुत विशेष बात होती है ना। तो जब इस प्रकार की अवस्था आती है तो मन परम प्रसन्नता को प्राप्त होता है, और फिर कभी भी किसी भी अवस्था में संसार की बड़ी से बड़ी घनघोर अवस्था आ जाए तो भी आपका फिर ये मन विचलित होने वाला नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार से मन रूपी तप का जो है यहां पर विवेचन किया है कि किस प्रकार से तीन तपों में जो है, पहला है शरीर तप, दूसरा है वाणी तप, और तीसरा है मन का तप, यानी मनसा वाचा कर्मणा। तीन चीजें हो गई ना, तो मनसा वाचा कर्मणा जब आप तप करने में सक्षम हो जाएं, ये तो करना ही पड़ेगा, और करने के संग संग उसके बाद फिर तीन शर्तें इसमें लागू होती। ये तीनों तप हैं और तीन प्रकार के लोग इन्हीं तपों को तपते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता किसका, श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्त्रिविधम नरहि अफला कांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचच्छते। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो तीनों तप मैंने तुमको उपरोक्त बताए हैं, जब अपला कांक्षिभिर्युक्त, इन तीनों तपों को शारीरिक रूप से जो बताया गया वो, वाणी रूप से जो बताया गया वो, और मानसिक रूप से जो बताया गया वो, इन तीनों तपों को करने में जब वो कोई फल की इच्छा नहीं करता है, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो वाणी के द्वारा दूसरे का सत्कार हो, या मन के निग्रह के द्वारा दूसरे को प्रेम देना हो, ये सारी क्रियाओं में वो दूसरे से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है, बदले की भावना नहीं है उसकी कि मैं ऐसा करूं तो इसके बदले में मुझे ऐसा मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये जो युक्त ही न रही, ऐसे जो योगी पुरुष हैं जो बिना इच्छा आकांक्षा के, और उसके बाद दूसरी चीज है श्रद्धया परया, एक तो साधारण श्रद्धा है लेकिन अध्यात्म में परया श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी, पर श्रद्धा हमारा, जैसे पर ब्रह्म है ना, परमात्मा है, उसी प्रकार से पर श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के इस संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो पहले तो बड़ी श्रद्धा हो, और श्रद्धा के बाद बिना आकांक्षा इच्छा के ये तीनों तपों का पालन किया जाए। कहते हैं श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्त्रिविधे, तीन प्रकार के मनुष्य जो तप करते हैं उनमें से जो इस प्रकार से करने वाला है वो हमारा सात्विक भाव क्या कहलाता है, सात्विक भाव, यानी जिसको परमेश्वर की चाहना है उसके लिए ये भाव है। अब यही तीनों तप, देखो चीज वही है लेकिन केवल हमारी सोच बदल जाने पर, विचारधारा बदल जाने पर सारा उसका फल ही क्या हो जाता है, तप वही किए, गुरु प्राज्ञ पूजन सब कुछ किया, देव पूजन किया, गुरु की सेवा की, लेकिन उसके संग हमने क्या किया, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। यही तीनों तप, मन वाणी कर्म के जो तीनों तप समझाए गए हैं, जब हम किस भावना से करने लगते हैं कि इन सेवाओं को करने पर हमारा सत्कार हो, हमारी इज्जत बढ़े और लोग हमारी पूजा करें, यानी हमारा जयकारा लगाएं कि वाह 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 जी आप नहीं होते दुनिया में तो दुनिया टिकने वाली, ऐसा चाहते हैं कि नहीं, लोग हमारी इस प्रकार से बड़ाई करें, ये भावना जब आ जाए, चाहे कहते हैं और अन्य बहुत सारे स्वार्थ संसार में हैं, बहुत सारे स्वार्थों को हृदय में रखकर दम्भेन, खाली दिखावा करने के लिए, बहुत से लोग दिखावा करने के लिए हमारा सेवा करते हैं, है ना, आपने देखा बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं तो उसमें तो बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल मन से सेवा करेंगे, और उसमें से 98 ऐसे होंगे जो केवल किसके लिए, दिखावे के लिए सेवा करेंगे। तो मन से, वाणी से और शरीर से पाखंड करके, यानी केवल दिखावा करके सेवा करना है, ऐसा जो सेवा का फल है, कहते अध्रुवम चलम, अनिश्चित फल प्राप्त होता है इसका, है ना, क्षणिक फल वाला है, इसका फल तो अवश्य मिलेगा आपको इन तपस्याओं का, लेकिन ये फल कितनी देर के लिए मिलेगा, आपकी यश कीर्ति सम्मान हो जाएगा, आपको थोड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, हैं, और आपको क्षणिक रूप से सम्मान का अनुभव होने लगेगा, और वो क्षणिक प्रसन्नता, जब आपकी लोग बड़ाई करेंगे आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, और 2 दिन बाद कोई आपकी उसी कार्य के लिए बुराई करेगा तो आपकी प्रसन्नता क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और आप फिर क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो वही सारे कर्म है महाराज, है ना, लेकिन उनसे जो सात्विक के बाद क्या आता है, राजस, राजस भाव आ जाने पर क्षणिक फल वाला हो जाता है, और थोड़ी सी प्रसन्नता देकर अंतर ध्यान हो जाता है, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को राजसी भाव में ही इन तपों को तपते हुए देखा जाता है ना। ये जितनी भी चीजें गिनाई गई हैं, ये सब राजसी भाव में लोग भजते हैं यानी तपस्या करते हैं, और उसका परिणाम जब उनको संसार में मिलता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब उसका दुष्परिणाम मिलता है तो दुखी होते हैं। तीसरी जो रूप है उसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय जो है वो समाप्त हो गया। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। और आपको आमंत्रित करते हुए आज शाम को रामचरितमानस का अरण्य कांड, क्योंकि भगवान की वन लीला है ना, वन में प्रवेश भगवान का नाम ही अरण्य है। तो 6 से 7:30 बजे का समय रखा गया है, तो आप लोग आमंत्रित हैं शाम को अरण्य कांड का, भगवान का परम प्रेम रूप, या जिसको हम लोग अद्वैत कहते हैं शास्त्र की भाषा में, वेदांत की भाषा में अद्वैत कहते हैं, और भक्ति की भाषा में परम प्रेमा भक्ति कहते हैं। दोनों जगह स्थिति एक ही है कि प्रेम गली यति साकरी जामे दौना समय, खाली एक ही जहां पर रह जाता है। तो शाम को उसकी चर्चा करेंगे रामचरितमानस अरण्य कांड के माध्यम से। तो इस प्रकार से सुबह गीता का आनंद लीजिए और शाम को रामचरितमानस का। निमंत्रित करना हमारा कार्य, आना आना आना। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।